नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच एयरलाइन एयर इंडिया ने भारत से तेल अवीव के लिए अपनी निर्धारित उड़ानें 30 नवंबर तक निलंबित कर दी हैं। कंपनी ने 7 अक्टूबर से इजराइल के तेल अवीव जाने वाली या वहां से आने वाली उड़ानें संचालित नहीं की हैं। कंपनी के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि तेल अवीव के लिए उड़ानें 30 नवंबर तक निलंबित कर दी गई हैं। एयर इंडिया सामान्य तौर पर दिल्ली से तेल अवीव के लिए सप्ताहांत में 5 उड़ानें संचालित करती है। ये उड़ानें सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार को हैं। एयरलाइन ने पिछले महीने इसराइल हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली से तेल अवीव के बीच कुछ उड़ानें संचालित की थीं। शुरुआती कारोबार में रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 83.15 पर पहुंच गया, जिससे घरेलू इक्विटी में सकारात्मक रुख आया क्योंकि बाजार में जोखिम की भावना प्रबल थी। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अक्टूबर में अमेरिकी नौकरी वृद्धि उम्मीद से कम रहने के बाद अमेरिकी मुद्रा के अपने ऊंचे स्तर से गिरने के बाद रुपए में तेजी आई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.17 पर खुला और फिर 83.15 के शुरुआती उच्च स्तर को छू गया। ये पिछले बंद के मुकाबले 5 पैसे की बढ़त दर्शाता है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 83.20 पर बंद हुआ था। नौकरियों की रिपोर्ट जारी होने के बाद डॉलर कमजोर हो गया। इस बीच दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.03% की बढ़त के साथ 105.05 पर था। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने BOM के MD और CEO AS राजीव के कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति तक 6 महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO MV राव का कार्यकाल 31 जुलाई सन 2025 तक बढ़ा दिया गया है। गेम बनाने वाली कंपनी क्रॉफ्टन के भारतीय कारोबार प्रमुख शॉन ह्यूनिल सोहन का कहना है कि भले ही भारत के कुल उपयोगकर्ता आधार का 10% से भी कम गेम के लिए भुगतान करता है, लेकिन ये कंपनी द्वारा तैयार पबजी और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के शीर्ष 5 बाजारों में शामिल है। क्रॉफ्टन इंडिया के CEO सोहन ने PTI भाषा से बातचीत में कहा कि उपयोगकर्ता आधार के मामले में भारत कंपनी के लिए शीर्ष 3 बाजारों में से एक है और गेमर्स के बीच भुगतान करने की इच्छा बढ़ रही है। उन्होंने कहा, भारत हमारे लिए दीर्घकालिक बाजार है। इसका बाजार प्रतिवर्ष कम से कम 10 या 15% बढ़ता है। हम अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं और बाजार के साथ बढ़ना चाहते हैं। भारत हमारे लिए शीर्ष 5 बाजारों में से एक है और उपयोगकर्ता आधार के मामले में ये शीर्ष 3 में है। मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अपना कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में मुंबई क्षेत्र और बेंगलुरु में 7 नए जमीन के टुकड़े जोड़े हैं। कंपनी की योजना यहां 14,300 करोड़ रुपए बिक्री मूल्य की आवासीय परियोजनाएं बनाने की है। लोढ़ा ब्रांड के तहत संपत्तियां बेचने वाली मैक्रोटेक डेवलपर्स ने ये भूखंड सीधी खरीद या भूस्वामियों के साथ संयुक्त उद्यम के तहत जोड़े हैं। कंपनी के MD और CEO अभिषेक लोढ़ा ने PTI भाषा से बातचीत में कहा कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कई भूखंड जोड़े हैं, जिन पर बिक्री योग्य 83 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल तैयार किया जा सकता है। इनकी बिक्री से 14,300 करोड़ रुपए जुटाने की संभावना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन की उसकी साझेदार BP PLC ने KG गैस की कीमत तय करने के लिए ऑयल इंडेक्सेशन को फिर से अपनाया है। इससे कच्चे तेल की तेजी का लाभ लेने में मदद मिलेगी। ऑयल इंडेक्सेशन के तहत गैस की कीमत कच्चे तेल के दाम से जुड़ी होती है। KG बेसिन भारत में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है। रिलायंस और बीपी ने एक निविदा में 1 दिसंबर सन 2023 से बंगाल की खाड़ी में KG-D6 ब्लॉक के प्रतिदिन 40 लाख मानक घन मीटर गैस के लिए खरीदारों से बोलियां मांगी हैं। निविदा दस्तावेज के अनुसार कंपनी चाहती है कि उपयोगकर्ता ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत के अनुसार मूल्य उद्धृत करे। कंपनी ने इस साल मई में अंतर्राष्ट्रीय गैस बेंचमार्क JKM के अनुसार गैस बेची थी। चाय उत्पादकों के निकाय भारतीय चाय संघ ने कहा है कि उत्तरी बंगाल का चाय उद्योग गंभीर संकट से होकर गुजर रहा है और क्षेत्र में कई बागान बंद हो गए हैं। TAI के महासचिव PK भट्टाचार्य ने कहा कि अक्टूबर सन 2023 में उत्तरी बंगाल में 13-14 चाय बागान बंद हो गए, जिससे 11,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। TAI ने कहा कि इस साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित अंतरिम मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण संगठित और छोटे चाय कारखानों सहित लगभग 300 बागानों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।